जानवी आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही अमर ने उसकी बात बीच में काटते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, मैं बिजी था बच्चा, पर तुमने कभी सामने से अप्रोच ही नहीं किया कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूं, क्योंकि शायद तुम्हें वो फ्रीडम अच्छा लग रहा था मुझसे दूर रहकर, और मुझे भी यही लग रहा था, तुम्हें टाइम और स्पेस दोनों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं बिजी था, वरना ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है मेरे पास जो मेरी बीवी से ज़्यादा बड़ा हो या मेरी बीवी से ज़्यादा ज़रूरी हो। जानवी ने नज़र मुड़ते हुए समर्थ और त्रिशा की तरफ देखा, जो अब फेरों के लिए खड़े हो रहे थे। जानवी ने जल्दी से अमर का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, चलो उन पर फूल बरसाते हैं, हम अपनी बात बाद में करेंगे। अमर ने गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे से सर हिलाकर कहा, फिर से मेरी बात अधूरी रह गई बच्चा, तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। जानवी ने जैसे ही महसूस किया अमर उसके पीछे नहीं आ रहा है, उसने मुड़ते हुए अमर की आंखों में देखा, जिसे देखकर लग रहा था अमर किसी भी पल रो देगा। जानवी ने एक नज़र सबको देखा और तेज़ कदमों से अमर के करीब आई। अमर अब हल्की बेरुखी से अपनी नज़रें मोड़ लेता है, और जानवी उसके करीब जाते ही अपनी एड़ी उठाते हुए अमर के होठों पर हल्के से किस कर लेती है। अमर जो नज़रें फेर कर खड़ा था, अचानक ही इतने सॉफ्ट और गीले होठों को अपने होठों पर महसूस कर उसे अपनी पूरी बॉडी में झनझनाहट महसूस होती है, और अगले ही पल वो हैरानी से जानवी की आंखों में देखता है। अमर की आंखें जानवी के एक मूव से ही हद से ज़्यादा नशीली हो गई थीं। जानवी दो कदम पीछे हटते हुए बोली, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस, आगे से आपकी सारी बात मानूंगी, अभी गुस्सा छोड़िए ना, कितना स्पेशल मोमेंट है समर्थ जी और त्रिशा दी के लिए, प्लीज़। अमर जो अब तक उसके होठों के एहसास से उभर नहीं पाया था, उसका मासूम सा चेहरा अपने हाथ से छूते हुए बोला, ओके, इससे ज़्यादा मासूम चेहरा बनाया तो सबके सामने इतनी देर किस करूँगा कि सांस आना बंद हो जाएगा। जानवी ने सहमति हुई अपनी नज़रें झुका ली, और अमर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके गुलाबी गाल को धीरे से चूम लिया, और फिर दोनों ही मंडप की तरफ बढ़ गए। समर्थ भारी मन और भारी कदमों के साथ एक एक कदम बढ़ा रहा था। उसका चेहरा जो कुछ वक्त पहले दुखी था, इस बार बिल्कुल इमोशनलेस हो चुका था। उसने अपने जबड़े बुरी तरह कसे हुए थे, जैसे मन ही मन कोई गंभीर प्लानिंग कर रहा हो। वहीं त्रिशा के चेहरे पर अब भी जंग जीतने वाली मुस्कान थी। त्रिशा ने अपने मन ही मन कहा, समर्थ रावत, अब तुम चाहकर भी मुझे अमर और जानवी की लाइफ से दूर नहीं रख सकते, किसी में इतना दम नहीं जो मुझे इस घर से बेदखल कर पाए, और अब देखना, अमर की ज़िंदगी से जानवी का नामो निशान मिटा दूंगी। वहीं समर्थ अपने मन ही मन बोल रहा था, तुम्हें लगता है तुमने जंग जीत ली है मिस त्रिशा, पर यह जंग की शुरुआत है, तुम इस शादी के बाद बहुत पछताने वाली हो, तुमने मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ये शादी की है, और मैंने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, जब शादी में धोखा मिलने पर मैं तुम्हारा वो हश्र कर सकता हूँ, तो अब तो उनकी खुशहाल ज़िंदगी में तुम तबाही लाना चाहती हो, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये सोचते वक्त उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो दोनों साथ साथ पंडित के कहे अनुसार सारे वचन भी ले रहे थे, जिनका फ़िलहाल कोई मतलब नहीं निकल रहा था, क्योंकि उनके मन में कुछ और चल रहा था और ज़ुबान से वो कुछ और बोल रहे थे। देखते ही देखते शादी की सारी रस्में ख़त्म हो चुकी थी, जिसके बाद पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, अब शादी संपन्न हुई, आज से तुम दोनों पति पत्नी हो, अब बड़ों का आशीर्वाद ले लो, ताकि ये रिश्ता 7 जन्मों तक अटूट विश्वास और प्रेम के साथ बंधा रहे। त्रिशा और समर्थ ने एक साथ एक दूसरे को देखा, उन दोनों की आंखें आग उगल रही थीं, जैसे उन्हें इस रिश्ते में ना विश्वास चाहिए था और ना ही प्रेम, लेकिन फिर दोनों ने सामने मुड़ते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाई और एक एक कर सबका आशीर्वाद लेने लगे। रजत, कल्याण सिंह और उसके बाद मीनाक्षी और महेश का, सबने खुशी खुशी उन दोनों को आशीर्वाद दिए। अचानक ही दीक्षांत अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए उनके सामने आकर बोला, मैं भी तुम दोनों से बड़ा हूँ तो मेरा भी आशीर्वाद लेना बनता है। समर्थ ने खुन्नस भरी नज़रों से दीक्षांत को देखा, तो वहीं पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये तुम्हारे जेठ हैं तो तुम्हें इनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए बेटा। ये सुनकर त्रिशा ने आंखें बड़ी करते हुए पंडित की तरफ देखा, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर त्रिशा ने झुकते हुए दीक्षांत से आशीर्वाद लिया और ज़बरदस्ती समर्थ को भी झुकना पड़ा। उसके बाद उन्हें अमर और जानवी का आशीर्वाद लेना था। त्रिशा ने अमर के पाँव मुस्कुराते हुए छुए, लेकिन जानवी के नहीं। वहीं समर्थ ने दोनों के पाँव छुए। जानवी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो खुद में सिमटते हुए अपने पाँव पीछे कर रही थी, जिसे देखकर समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस ब्यूटीफुल, इतना क्यों डर रही हैं आप, मैं पैर पड़कर उल्टा थोड़ी गिरा दूंगा मैं आपको। ये सुनकर जानवी के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसके बाद जानवी और माही त्रिशा के पास जाकर उसका लहंगा संभालते हुए उसे समर्थ के कमरे की तरफ ले जाने लगी। त्रिशा ने मुस्कुराते हुए माही की तरफ देखा तो वहीं जानवी का हाथ अपने लहंगे से हटाते हुए बोली, ये झूठी फिक्र और झूठी खुशी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम तो चाहती थी मैं यहाँ से दफा हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी। त्रिशा ने जिस नफरत के साथ ये सब जानवी से कहा था, जानवी का दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसने आंखों में आंसू भरते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कुछ भी समझो दी, पर मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ और मेरी आपके लिए फिक्र पूरी जिंदगी कभी खत्म नहीं होने वाली है। टू बी कंटिन्यूड।